نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم روح القرآن پارا نمبر 3 ہم نے ابھی تک جو چیز پڑھی اس کو اگر ہم سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ سے اس بات کی دعا کریں کہ جو کچھ بھی ہم پڑھ رہے ہیں اور اس میں سمجھ رہے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان کر دے شعور سے پڑھیے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر تلک الرسل پارہ نمبر 3 ہے سورۃ بقرہ کنٹینیو ہے اور ہم اب اس میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 253 سے دیکھیں گے جس کا ٹاپک ہے انسان مجبور محض نہیں بہت سارے لوگ دنیا میں یہ فیلنگ رکھتے بھی ہیں اور دیتے بھی ہیں کہ ہم تو مجبور ہیں جی خاص طور پہ تقدیر کے موضوع کو لوگوں نے بنیاد بنا کر خود کو مجبور ثابت کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تلک رسل فضلنا بعضہم علی بعض یہ تو رسول ہیں جن میں سے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت دی اگر آپ پارہ نمبر 2 کی آخری آیت دیکھیے انک لمن المرسلین نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا خطاب کیا گیا تھا کہ آپ تو رسولوں میں سے ہیں اب یہاں اس ایک آیت کی روشنی میں جو باتیں آپ کے میرے عمل کی ہیں وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے مختلف ادوار میں انبیاء کرام کو بھیجا اور ان کو مختلف خوبیاں بھی عطا کیں اس دور کے تقاضوں کے لیے یہ ایک بڑی نیچرل سی بات ہے اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں تفضیل بین الانبیاء یا اردو میں کہیں گے تو تفضیل بین الانبیاء یعنی ایک نبی کو دوسرے نبی پر فضیلت دینا مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے براہ راست خطاب کیا حضرت سلیمان علیہ السلام پرندوں کی بولیاں سمجھتے تھے اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش تھی وہ بالکل معجزانہ طور پہ تھی تو یہ سارا کچھ یہ نہیں بتاتا کہ کوئی نبی زیادہ اہم ہے کوئی غیر اہم لیکن ہوا کیا کہ بعد کے لوگوں نے جن کو امتی کہتے ہیں نبیوں کی ان باتوں کو بنیاد بنا کر ایک دوسرے سے اختلاف شروع کر دیا اور اگر آج کے دور میں آپ اور میں اس کو سمجھنا چاہتے ہیں بینگ امت مسلمہ تو جو بات انبیاء کرام کے بعد اللہ تعالیٰ نے دین کی خدمت کرنے والے محدثین کرام سے لی ہر ایک اپنے دور کے تقاضوں کی بہترین شخصیت تھے جیسے آج ہمارے ہاں چار نام بڑی ہی عزت سے لیے جاتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ امام مالک رحمہ اللہ اور اسی طرح سے باقی دو ائمہ کرام بھی تو یہ اپنے اپنے دور کی خوبصورت شخصیات تھے انہوں نے اپنی حیثیت کے مطابق اس دور کے اندر موجود سارے ریسورسز کو یوز کیا اور دین کی خدمت کی اور یہ چاروں آپس میں بہت اچھے تعلقات رکھتے تھے ایک دوسرے کے شاگرد بھی تھے ایک دوسرے کے گھروں میں مہمان بن کر بھی جاتے تھے ان کے بیچ میں کوئی اختلاف نہیں تھا کیونکہ ان سب نے جو بھی دین دیا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے دیا لیکن آج ہم امت کو چار بڑے گروہوں میں اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں 73 یعنی 73 سیکٹس میں ڈیوائیڈڈ دیکھتے ہیں تو یہ علم کی کمی ہوتی ہے ایک جملہ لکھ لیجئے گا نیا نیا علم بڑا اکڑا ہوا ہوتا ہے تھوڑے علم کے ساتھ انسان جھگڑتا ہے اس کو لگتا ہے صرف میں ٹھیک ہوں میری سوچ ٹھیک ہے جو مجھے سمجھ آ گیا وہ ٹھیک ہے لیکن آہستہ آہستہ جب علم پرانا ہوتا ہے تو دھلے ہوئے اور استعمال شدہ کپڑے کی طرح وہ نرم ہو جاتا ہے آج اگر علم کے بعد آپ کے اندر عاجزی نہیں آئی تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ ابھی مزید علم حاصل کیجئے پھر اس کے بعد آیت نمبر 254 میں آخرت میں نجات کے کچھ اصول ہیں یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاۃ والکافرون ہم الظالمون یہاں سے باقاعدہ طور پہ اگر آپ سورۃ البقرہ کو دیکھیں تو ہم نے 177 میں جس کو آیت بر کا نام دیا تھا مختلف اقسام بیان کرنی شروع کر دی تھی جس میں وصیت کے احکامات تھے وراثت کی باتیں تھیں اور قصاص کی پھر جہاد کی روزے کی نماز کی باتیں ہوئیں تو اب یہاں سے باقاعدہ طور پہ اکنامیکل ایشوز منی میٹرز معاشی معاملات ڈسکس ہوں گے ابھی یہاں صرف ایک دعوت دی ہے ہمیں کہ لوگوں خرچ کرو لفظ خرچ سن کر لوگوں کے ذہنوں میں بو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ٹائم باؤنڈ آپشن ہے آپ کیسے ایک چیک ہو اور اس پہ ڈیٹ لکھی ہو کہ اس ڈیٹ سے پہلے پہلے یہ ویلڈ ہے اس کے بعد یہ ان ویلڈ ہے آپ کو کوئی واؤچر مل جاتا ہے کسی دکان پہ شاپنگ کے بعد تو اس کی ایک ڈیٹ ہوتی ہے نا تو عموماً خواہش کیا ہوتی ہے कि हम जल्दी से इसको कैश करवा लें। तो आपके पास मेरे पास आज अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का मौका टाइम बाउंड है। एक ऐसा दिन आ जाएगा जिस दिन इंसान पे ज़िंदगी में आने वाली सारी मुश्किलात से बड़ी मुश्किल पड़ी होगी। और अमूमन दुनिया में जब इंसान के पास मुश्किल आती है तो नंबर एक वो माल खर्च करके उस मुश्किल से निकलना चाहता है। दूसरी बात क्या होती है, कोई ताल्लुकदारी है, किसी से दोस्ती है, किसी बड़े इंसान के साथ राहो रसम है, इस आयत में वो सारी खुशफहमियाँ दूर कर दी कि ला बैयुन फी, कोई तिजारत नहीं, ट्रेडिंग नहीं होगी कि $1,000 ले लीजिए और मेरे हिसाब को कम कर दीजिए या मुझे जहन्नम में ना दाखिल कीजिए। अच्छा, ये $10,000 ले लें और मुझे जन्नत का टिकट दे दें, देर इज़ नो ट्रेडिंग, नथिंग, वला खुल्ला, कोई दोस्ती नहीं, कोई एक फ़ोन कॉल आपका काम नहीं करवा सकेगी उस दिन, वला शफा, कोई सिफारिश भी नहीं होगी। हाँ, मगर जितनी जिस चीज़ की अल्लाह चाहे, जो आगे भी हम आयतुल कुर्सी में देखेंगे, तो आपके मेरे लिए इस आयत पे अमल क्या है कि आज आप और मैं अल्लाह के रास्ते में से मिली हुई हर सलाहियत, वो अंदरूनी सलाहियतें हैं, वो बैरूनी हैं, वो वसाइल, वो मीन्स, जिसमें आप देखिए कि बोलने की सलाहियत है इसको अल्लाह के रास्ते में बोलिए, लिखने की सलाहियत है उसको अल्लाह के रस्तों में लगाइए, माल है अल्लाह के बंदों पे खर्च कीजिए, अल्लाह के दीन की नशर व इशाअत में खर्च कीजिए, यदि बच्चे हैं आपके उनको अल्लाह के रस्तों में, अल्लाह के रास्ते के बेहतरीन लोग बनाइए ताकि वो अमल करें। तो जो चीज़ें आपके मेरे पास हैं ये अल्लाह का दिया हुआ रिस्क है। पहले पारे में भी आपने पढ़ा था, मिम्मा युन्फिकून, मिम्मा रज़क़नाहुम युन्फिकून, जो हमने उनको रिस्क दिया वो उसमें से खर्च करते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर एक जुमला हमें हमेशा याद रहे कि मैंने कौन सा अपने पास से देना है, मैंने भी तो अल्लाह के दिए में से देना है, तो देना भी आसान हो जाता है। फिर वो वक्त हो, वो घर हो, वो गाड़ी हो, तो शेयरिंग इज़ केयरिंग। आज अल्लाह ताला ने आपके मेरे लिए मौके दिए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान के महीने में हमारे लिए बहुत से मौके आते हैं, और इस पूरे पारे में आप देखिए कि इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह का मौजू बहुत ज़्यादा होगा। अब जब किसी को कहा जाता है कि अल्लाह के रास्ते में खर्च करो तो ज़रा सी तबीयत बोझिल होती है। हाँ, शादियों में समधानों में देना हो, कुर्ता टोपी देनी हो, किसी को शादी के मौके पे एज अ दूल्हा कुछ देना हो, तो हम बहुत सजा के संवार के बढ़ा के देते हैं, क्योंकि हमारे दिलों में उनकी मरूबियत होती है, हमें वो बड़े लगते हैं। किसी अमीर रिश्तेदार के घर जाना हो तो वहाँ बहुत हमें देने में मज़ा आ रहा होता है, अच्छी से अच्छी चीज़ देते हैं। तो अल्लाह ताला कहता है कि तुम्हें मेरे रास्ते में देना मुश्किल लगता है, आओ मैं तुम्हें बताऊं कि मैं कौन हूँ। इसके बाद अब आपको आयत 255 में अल्लाह ताला का तारुफ, इस आयत को आयतुल कुर्सी कहते हैं, तौहीद बारी ताला का ख़जाना है। सिर्फ एक आयत अल्लाहु ला इलाहा इल्ला से शुरू होती हुई वहुवल अलीयुल अजीम पे ख़त्म होती है। अगर आप इसको बाद में जाकर काउंट करेंगे, इसमें 10 जुमले हैं अरबी जुबान के। 30वें पारे की 3 सूरतों के बराबर सिर्फ एक आयत है, क्योंकि 3 आयतों से कम की कोई सूरत नहीं है कुरान में, सूरत नसर, सूरत असर, और इसी तरह से एक और सूरत भी है। लेकिन कुरान सूरत बकरा की इस आयत में अल्लाह ताला की मार्फत देता है। वजह क्या है, एज यू नो हिम यू विल लव हिम, जितना हम जिसको जानते हैं हम उतना उससे मोहब्बत करते हैं। ये असूल अल्लाह ताला के लिए भी है, जितना हम उसको जानेंगे, उसके नेम्स एंड एट्रीब्यूट्स को जानेंगे, अस्मा व सिफात कहते हैं इसको अरबी में, और इसी तरह से अल्लाह ताला की खूबियों को जानेंगे, कभी उसके रहीम होने को, रहमान होने को, अल वदूद, अल्लाह ताला ने जो अपनी खूबियाँ हमें बताई हैं, हमारा दिल उतना अल्लाह ताला से जुड़ेगा। और जितना हम अल्लाह को नहीं जानेंगे, और माजरत के साथ हमें तो बचपन से अल्लाह ताला के का नेगेटिव ही तसव्वुर दिया जाता है, अल्लाह मारेगा, अल्लाह नाराज़ होगा, बेटा ये दूध पी लो नहीं तो अल्लाह आग में डालेगा। आप एक मासूम बच्चे को क्यों अल्लाह से दूर करते हैं? कई बच्चे कहते हैं अल्लाह बार बार क्यों नाराज़ होते हैं, अल्लाह इतनी जल्दी क्यों रूठ जाते हैं, हालांकि अल्लाह ने तो 10 साल और उसकी बलूगत तक का कलम ही उठाया हुआ है उसकी नेकी और बदियों को लिखने का। तो क्या पता चला, इस आयतुल कुर्सी पे गौर करें, और ये वो आयतुल कुर्सी है कि शैतान इसकी ताब नहीं ला सकता। आपने मारूफ वाक़िया हज़रत अबू हुरैरा के माले गनीमत पे मुकर्रर होने का कई बार सुना होगा। जब आप यकीन के साथ इसको पढ़ते हैं, अब हम भी इसको रस्मी तौर पे पढ़ें, अच्छा चलो जी पढ़ के फूंक दो, हिसार बांध दो, जितने घरों में ताली की आवाज़ जाएगी, ये सिर्फ मज़ाहिर हैं। असल में आप उस वक्त शैतान को बेबस कर रहे होते हैं कि तुम जो करना चाहते हो कर लो, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुआ, फिर आप देखिए अल हई अल कयूम, थामने वाला जिंदा है। अल्लाह ताला को नींद नहीं, अल्लाह ताला आपके लिए हर वक्त अवेलेबल है। दुनिया का कोई हुक्मरान कोई बादशाह ये दावा नहीं कर सकता कि रात में आओ या दिन में आओ। 24/7 के नाम पे अमेरिका में स्टोर्स की चेन तो बना दी कि आप 24 घंटे और हफ्ते के 7 दिन शॉपिंग तो कर सकते हैं, लेकिन कई जगहों पे आपको काउंटर पे कोई इंसान नहीं मिलता। वो सेल्फ सर्विस की आपको सहूलत देते हैं कि आपने कुछ शॉप करना है, खरीदिए और ख़ुद अपना सामान जमा करके पैसे दे के चले जाइए। अल्लाह ताला रात को भी पुकारता है, दिन को भी पुकारता है। आप देखिए कि आप तन्हा हैं, आप कहती हैं मैं दुखी हूँ, हाय मैं किसको अपना दुख सुनाऊँ, हाय मैं बीमार हूँ मैं किसको सुनाऊँ। वो है ना, अमूमन इंसान दुख के और बीमारी के लम्हात में बड़ा कमज़ोर होता है। अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं कि तुम किसी के पीछे क्यों फिरते हो, माँ क्या करेगी, और दुखी होगी तुम्हारा दुख सुनकर। बाप गुस्से में आ जाएगा, जिसने तुम्हें दुखी किया उससे जाके लड़ने लगेगा। भाई तो गैरत के नाम पे पता नहीं जाकर हाथ ही ना उठा ले। तो तुम अल्लाह को दुख सुख सुनाओ। तो आयतुल कुर्सी का तकाजा क्या है कि हम इसे अपना कुर्ब महसूस करें, उसके ऊपर नजरें रखें। वो इतना बड़ा, हम एक जरा सा बड़ा घर बना लेते हैं हमसे संभलता ही नहीं। खवातीन वक्त के साथ कमजोर हो जाती हैं, फिर कहती हैं कितने दिन हो गए ऊपर के फ्लोर में जाके भी नहीं देखा, अब मुझसे सीढ़ियां नहीं चढ़ी जाती। बड़े घर में आने का शौक 1-2 साल के अंदर पूरा हो जाता है। अल्लाह ताला कहते वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, तो बात यह है कि लैसा कमिस्लिही शैयुन, उसकी तो मिसाल जैसा भी कोई नहीं। तो आप और मैं इस वक्त इससे अपना ताल्लुक कैसे जोड़े, अपना कोई दुख सोचिए और फिर आयतुल कुर्सी के तर्जमे पर गौर कीजिए। एकदम आपको लगेगा मेरे कंधे हल्के हो गए। बीमारी सोचिए, माशी परेशानी है, लोग आके लोगों के आगे हाथ फैलाते हैं, बैगर्स स्ट्रीट बैगर्स। मैं सोचती हूँ अगर इसकी तौहीद पुख्ता होती ये कभी किसी के आगे हाथ ना उठाता। फिर इसके बाद आयत नंबर 256 से 257 में एक बड़ा बुनियादी असूल दिया गया है कि मजबूत सहारे को थाम लो, ला इकराह फी दीन, दीन में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेके तारीख इस्लाम के हर आदिल बादशाह का दौर देख लीजिए, कभी लोगों को गन पॉइंट पे मुसलमान नहीं किया गया। आज आप और मैं भी किसी को ज़बरदस्ती मुसलमान नहीं कर सकते, इसलिए कि कद तबैयना रुश्द मिनल गई, अल्लाह ने इंसान को हिदायत को पाने के रिसेप्टर्स दिए हैं। अमूमन चार बड़े ज़राए हैं जिनके ज़रिए से इंसान अल्लाह ताला तक पहुंच सकता है, जिसमें सबसे पहले वही इलाही। हर दौर के नबी पे जो पैगाम उतरा वो बताता था कि ला इलाहा इल्लल्लाह। इसमें हम मुसलमान खुशकिस्मत हैं क्योंकि जो पैगाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए पहुंचा वो अनचेंजेबल था, आज भी ज़ेर ज़बर में तब्दीली नहीं। लेकिन हम उस कुरान को पढ़ते कितने, और पढ़ते तो बहुत है माशाल्लाह कुछ जगह पे, लेकिन समझते कितने। अगर कोई कुरान का तर्जमा समझ ले सिर्फ और कुरान पढ़े तो अल्लाह तक पहुँच जाएगा। पूरे कुरान का टॉपिक ही अल्लाह ताला एक है, ये है ना कि ये कि अल्लाह है, क्योंकि अल्लाह है इसकी दलील तो आपके मेरे नफ्स में है। तो पहली चीज़ वह कहते हैं इसको, उर्दू में वही कहते हैं, रेवोल्यूशन कह लीजिए इंग्लिश में। दूसरी चीज़ है कायनात, इन नफी खल्क समावाती वल अर्थ, सूरज चांद सितारे आसमान रात, कितने सेट सिस्टम से चल रहे हैं। आप देख रहे हैं कि आप जिधर नज़र डालते हैं एक हारमनी है, सिंकनाइज्ड है। बारिश के होने के मल को देखिए, कुछ चीज़ें नीचे समंदरों से उठती हैं और कुछ आसमानों से जाती हैं, फिर जाके इंसानियत की प्यास बुझती है। तो जो अपनी आँखों से तासुब की पट्टी उतार कर कायनात को देखेगा उसको अल्लाह ताला नज़र आएगा इंशाल्लाह। तीसरी चीज़ अक्ल है, जिसको आप इंटेलिजेंस कह सकते हैं, जिसको आप विजडम कह सकते हैं। इंसान की अक्ल कहती है कि इस दुनिया को बनाने वाला कोई एक है। मसलन आप देखते हैं कि एक बस में दो ड्राइवर हों तो बस नहीं चलती, इसी तरह से एक जहाज़ में दो पायलट हों तो नहीं चलते। अल्लाह ताला खुद कुरान पाक में फरमाते हैं, आगे जाके हम पढ़ेंगे, कि अगर दो खुदा होते तो ज़मीन और आसमान बिगड़ जाते। ठीक है, तो क्या पता चला कि ये भी सबके साथ एक जैसा। इसके बाद अगर आप चौथी चीज़ देखें जो इंसानी फितरत है, इसको नेचर कहते हैं, फितरा कहते हैं, इंस्टिंक्ट कहते हैं। हर बच्चे से अल्लाह ताला ने एक अहद लिया, इसको इंशाल्लाह हम सूरत अल अराफ में डिटेल से पढ़ेंगे। मैं तो चाह रही थी कि आपका आज ही शरह सदर हो जाए, और ये सवालात जो अक्सर बच्चे करते हैं माँ बाप से और वेस्ट में रहने वाले करते हैं कि मामा हम मुसलमान हैं, फलां दूसरे मज़हब पे हैं, वो क्यों मुस्लिम हो, हम क्यों ना उनकी बस जाएं। मैं क्यों अपने हिंदू दोस्त को कहूं कि तुम मुस्लिम हो, या मैं क्यों किसी क्रिश्चियन और ज्यू से ये एक्सपेक्ट करूं कि वो अल्लाह को माने, मैं किसी एथियस्ट को क्यों मजबूर करूं। तो जवाब आपको मैंने दे दिया, चार चीज़ों में से सिर्फ एक एक्स्ट्रा हम मुस्लिम्स के पास आज है जो कुरान और सुन्नत की रोशनी में है, बाकी तीन चीज़ों को सामने रख लें, हर इंसान को एक जैसी मिली है। आज भी जो लोग रिवर्ट होते हैं वो अपने तजुर्बे बताते हैं कि हमारे अंदर से एक आवाज़ उठी। एक खातून थी जो नॉन मुस्लिम थी और किसी बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ी हुई थी, नामुमकिन था कि वो काम हो, और अचानक उनको खबर मिली कि वो काम हो गया, तो अपनी जगह से उठी और एकदम ज़मीन पे जाकर इस तरह झुक गई जैसे हम सजदे में झुकते हैं। उसके साथ जो उसकी दोस्त बैठी थी उसने कहा कि आपने ये क्या किया है, कह रही आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। ये खुशी की खबर मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी और मैं उठकर ज़मीन पे आ गई। उन्होंने कहा तुम्हें पता है ये काम तो मुसलमान करते हैं और दिन में कई बार करते हैं। कहती हैं बस ये चीज़ थी जिसने मुझे इस्लाम की तरफ माइल किया, कि ज़रूर फिर इस्लाम को इल्हामी मज़हब होगा, और फिर उसने इस्लाम को स्टडी किया और वो मुसलमान हो गई। तो उसकी इंस्टिंक्ट है ना, खुशी में बंदा अल्लाह के आगे झुक जाता है। तो लिहाजा अगर इन चार चीज़ों को सामने रख लें तो ला इकराह फी दीन, किसी को आप ज़ोर ज़बरदस्ती ना करें। अब आज हमारा आपका मामला मुस्लिम मुल्कों में रहते हुए ज़्यादा नॉन मुस्लिम से नहीं, मुस्लिम से पड़ता है। चलिए नाम के तो हम मुस्लिम हैं ही ना, पाकिस्तान में 97% मुस्लिम है, पूरी दुनिया में 2 बिलियन है। अब आप और मैं इस आयत को कैसे अमल में लाएंगे? तो आप देखिए कि आप अपने बच्चों को कहते हैं नमाज़ पढ़ो, वो कहते हैं हमने नहीं पढ़नी। शौहर साहब से कहते हैं आप नमाज़ पढ़े, बीवी का दिल नहीं है नमाज में। आप किसी से कहते हैं सिगरेट नहीं पिए, आपकी सेहत के लिए ख़राब है, कोई शराब से मना करे। अब आप ज़बरदस्ती करके अगर कोई बात मनवाते हैं वो नहीं मानते, वो कहते हैं हम आपको क्यों माने। तो वहाँ ये बात याद रखिए, कद तबैना रुश्दु मिनल गई। इंसान कभी कभी बुरे माहौल की वजह से, कभी हालात की वजह से गलत आदत का आदी हो जाता है। हमारा पेरेंटिंग स्टाइल भी ठीक नहीं, फिर हमारे बच्चे खुद देखते हैं कि हमारे तो बाप भी नमाज नहीं पढ़ते, हम क्यों पढ़ें। और सबसे बड़ी बात है अल्लाह ला इलाहा इल्ला, अपने बच्चों, बड़ों, शोहरों, बीवियों, नौकरों, मुलाजिमों, जिससे जिसको भी आप चाहते हैं कि वो बामल मुसलमान बने, तो आप उनको अल्लाह ताला की कदर करवाइए। और इसके लिए आप आयतुल कुर्सी को तर्जमे और मफहूम से और अल्लाह के नामों को गौर व फिक्र से करवाने वाली दावत दे दीजिए उनको। और फिर सबसे बड़ी बात दुआ है, जो काम हम खुद नहीं कर सकते वो नहीं होगा। तो क्या पता चला है 256 से, दीन के बारे में कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, कोई आपकी खातिर कर भी रहेगा तो फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि हिदायत जलालत से रोशन हो चुकी। अभी सूरज निकला हुआ है बाहर, आपको हर चीज़ खुली खुली दिख रही है। रात के वक्त आपको कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी जब तक है और बल्ब ना जलाएं। तो अल्लाह के नबी आपको मुझे जिस दीन पे छोड़ कर गए वो बड़ा वाज़े है। सहाबे किराम कहा करते थे कि नबी हमें जिस दीन पे छोड़ के गए, लैलुहा का नहारीहा, जिसकी रातें भी उसकी सुबह की तरह रोशन है। सहाबा कराम कहते हैं कि एक परिंदा भी अगर उड़ता था तो हम कह सकते हैं कि नबी सल्लम ने हमें उनके बारे में बताया। अच्छा मेंटोर, अच्छा उस्ताद कौन होता है जो अपनी इल्मियत का बोझ नहीं डालता, लोगों पे रोब नहीं डालता, उसका दिल करता है जो बात मेरी सुन रहे हैं उनको मेरी बात समझ आ जाए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा ही करते थे, और तारीख़ गवाह है कि किसी पर भी कबूल इस्लाम के लिए जबर नहीं किया गया, ना किया गया ना आज किया जाएगा, क्योंकि अल्लाह ने हिदायत और गुमराही दोनों को वाज़े कर दिया। गर्मी होती है सबको फील होती है, बारिश होती है सब देखते हैं। तो हर इंसान के अंदर, चाहे वो फासिक है, चाहे वो मुनाफिक है, चाहे वो कुफर पे है, चाहे वो मुत्तकी है, अल्लाह की मार्फत का पायलट फ्लेम चल रहा है। आपके ओवन में एक पायलट फ्लेम चलता रहता है, जब आग जलानी है हल्का सा पुश कीजिए वो जल जाता है। तो हिदायत की तलब है वादे अलस की सूरत में, लिहाजा किसी को मजबूर नहीं करना। उसके बाद आयत नंबर 259 का मेन टॉपिक आपको जो दिखेगा वो क्या है, कि अल्लाह मुर्दों को कैसे ज़िंदा करेगा। क्योंकि एक बहुत बड़ा तागूत होता है ये अल्लाह को मानने के रास्ते में, ख़ास तौर पे जहाँ अल्लाह के नबी सल्लम भेजे गए थे वहाँ ऐसा ही हो रहा था। सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पे शक था, एम्बिगिटी थी, इश्काल था मक्का वालों को, वो क्या था कि मरने वाले ज़िंदा कैसे होंगे। तो यहाँ अब चंद वाक़यात है, जिसमें पहला वाक़या हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का है। औकल्लज़ी मर्रा अला क़रियतिन वहिया ख़ावियतुन अला अरूशिहा, बैतुलमक़दस किबला था एक दौर में यहूद का, दुश्मन ने उसको ख़त्म कर दिया और याद रखिए, अल्लाह की किताब की हामिल कोई भी कौम जब अपनी किताब पे अमल करना छोड़ती है ना, सिर्फ बरकत की किताब समझती है, कुछ वजीफों की किताब समझती है, कुछ पुरसरार अमलियात की किताब समझती है, तो अल्लाह फिर दुश्मनों को उस कौम पे गालिब कर देते हैं। आज के मुसलमानों पे काफ़ी हद तक ये बात इम्प्लीमेंट हो रही है। तो उन्होंने सारी किताबें तौरात की जला दी और बैतुल मक़दस जो उनका क़िबला था उसको नीस्तो नाबूद कर दिया, डिमोलिश कर दिया। इतने में उज़ैर अलैहिस्सलाम नाम के एक शख्स जो नबी थे वहाँ से गुजरे, तो उन्होंने उस मुर्दा बस्ती को और टूटी फूटी और बिल्कुल ख़राब हालत में थी उसको देखा, दिल में दर्द भी आया कि मेरी कौम को क्या हुआ हुआ। तो उन्होंने अल्लाह ताला से वो बातें की जो यहाँ आपको दिख रही है कि अल्लाह ताला ये बस्ती कैसे ज़िंदा होगी। तो अल्लाह ताला ने फिर उनको ये दिखाने के लिए मौत दी और वो वहाँ 100 साल तक मुर्दा हालत में रहे। उसके बाद जब उनको अल्लाह ने चाहा जगाया, एक तो इससे पता चल गया कि मरने के बाद ज़िंदा किया जाएगा, इस दौरान में यहूद का अरूज शुरू हो चुका था। पिछली कौमों ने दुश्मनों के साथ मुकाबला करके फिर उनकी नस्ल में नेक लोग आए। अब हुआ क्या कि जब बस्ती दोबारा ज़िंदा हुई, तौरात नहीं थी, तो उज़ैर अलैहिस्सलाम ने अपने हाफ़िज़े की मदद से फिर दोबारा तौरात लिखाई थी। ये है वो वजह जिसके लिए आप सूरह तौबा में एक आयत पढ़ेंगे, वकालतिल यहूदु अल उज़ैरु इब्नुल्लाह। जैसे एक नसारा का अकीदा है ना कि हजरत ईसा अल्लाह के बेटे हैं नऊज़ुबिल्लाह, इस तरह यहूद के एक गिरोह एक सेक्ट का अकीदा है कि हजरत उज़ैर अल्लाह के बेटे, वो इस वाक़े की बुनियाद पे हैं। तो इससे आपको मुझे क्या शरह सदर मिला कि अल्लाह ताला मुर्दों को ज़िंदा करेगा, हमें इस पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बस दफ़ा लोग नासमझी में भी कुछ बातें कह देते हैं कि जी दोबारा किसने देखना है, एक बार जीना है, दोबारा तो नहीं आना, तो इससे बचना है। उसके बाद आगे आयत 260 में एक और वाक़या है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इत्मीनान क़ल्ब का। अल्लाह ने अंबिया कराम को दूसरों की हिदायत के लिए चूँकि चुना होता है, आप कह सकते हैं कि नबी ईमान का वो फर्नस होते हैं कि जिसने दूसरों को ईमान देना होता है, ईमान की भट्टी होते हैं। अंबिया कराम के दिलों में ईमान की आग जल रही होती है, तो कभी कभी अल्लाह ताला उनको अनयूजल चीज़ें दिखाते हैं। मिसाल है कि मैं आपको इस वक्त बताने की कोशिश में हूँ, अगर मेरा अपना ही माइंड क्लियर नहीं किसी आयत पे, मेरा अपना ही कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, तो मैं आपको कैसे क्लैरिटी दूंगी। और मेरी नज़र में एक अच्छा उस्ताद उसको परखने का एक क्राइटेरियन ये है कि जब आप उसके पास से उठे ना तो आप कहेंगे बड़ी आसान बातें थी, ये तो बात समझ आ गई, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। और इसके बरक्स अगर आपके हमारे उस्ताद को बहुत आता है, वो अरबी बहुत पढ़ते हैं, उनकी मिसालें बड़ी ऊंची होती हैं, तो आपको क्या मिला। तो अंबिया कराम दूसरों को बात समझाने के लिए आते हैं। तो वैस काल इब्राहीम रब्बी अरीनी कई फतोहिल मौता, इस वाक़े में भी बिल्कुल उसी तरह का वाक़ा है कि चार परिंदों को पहाड़ पे रख कर उसको बिल्कुल ख़त्म किया और जब उन्होंने उनको पुकारा तो पलट आए। असल में इसमें दलील थी कि क़यामत के दिन जब सूर की आवाज़ पड़ेगी तो कब्रों में सोए हुए लोग जो कब से सदियों दर सदियों से कब्रों में थे, वो अल्लाह की उस पुकार पे निकल कर आएंगे। आपके मेरे लिए भी इसमें यकीन है, अल्लाह का शुक्र है। हमारे वाली जनरेशन को तो इसमें कोई डाउट नहीं है। आगे मुझे नहीं पता हमारे बच्चे जिन अफकार में हैं, जिन नज़रियात में हैं, जिन लोगों के हाथों में तालीम पा रहे हैं, क्या वहाँ उनकी सोचे जाएंगी, लेकिन अनयूजुअल तरीके से कुछ थॉट्स हमारी नस्लों के जहनों में डाली जा रही हैं, जिसमें एक ये है कि मौज करो, मस्ती करो, कौन सा दुनिया में बार बार आना है। तो बार बार तो नहीं आना, लेकिन एक बार दोबारा ज़िंदा हमने होना है।